بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا تو ایک شکتیشالی گٹ آئے گا جس کے لوگ تمہارے چہروں کو برا بنا دیں گے اور مسجد الاقصی میں پرویشت ہو جائیں گے، जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से ये कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज बुधवार है और दिवस की 28, शवाल की 16 और मई की 18 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप 60वें में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलें, पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात उमर खयाम के सम्मान दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट अल अकीला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के प्रांगण में आग लग गई। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री बगदाद में मुलाकात करेंगे। रूस ने इसराइली युद्धक विमान पर हमला किया। आतिवादी हिंदुओं ने मस्जिद में आग लगा दी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इराक के पवित्र नगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट निर्माणाधीन प्रांगण में आग लग गई। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सूत्रों ने घोषणा की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट एक निर्माणाधीन प्रांगण में आग लग गई। इराकी सूत्रों ने खबर दी है कि ये आग प्रांगण में कालीनों को रखने वाले भाग में लगी। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद घोषणा की गई थी कि अग्निशमन दल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया। इस अग्निकांड के बारे में संभावित जानी व माली क्षति के बारे में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है।
निकट भविष्य में ईरानी विदेश मंत्री इराक की राजधानी बगदाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शीघ्र ही इराक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मुलाकात करेंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान की संसद मजलिस शुराए इस्लामी के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य ने फार्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि तेहरान और रियाज के बीच आरंभिक समझौता तय पा गया है। निकट भविष्य में हमारे और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच एक मुलाकात होगी। करीमी कुदसे ने कहा कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों और दूतावासों के खुलने के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों विशेषकर यमनी संकट पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन के एक सहायक व सलाहकार ने स्वीकार किया है कि 41 वर्षों के इतिहास के अध्ययन के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि अमेरिका के मुकाबले में ईरान विजेता है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार लिबनानी मूल के अमेरिकी विश्लेषक वलीद फारिस ने एक लेख में कहा है कि 41 वर्षों के इतिहास के अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सरकार अमेरिका के मुकाबले में विजयी रही है। वलीद फारिस इस समय अमेरिका के मुखर ईरान विरोधी विश्लेषक हैं। उन्होंने एक अमेरिकी समाचार पत्र न्यूज एमएक्स में लिखा है कि मैंने ईरान के इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभ से लेकर अब तक ईरानी सरकार और अधिकारियों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया है, जो इस बात का सूचक है कि अब तक ईरान अमेरिका के मुकाबले में विजयी रहा है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि ईरान ने देश के भीतर अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर ली है और पश्चिम एशिया में उसकी पकड़ व प्रभाव ध्यान योग्य है। इसी प्रकार ईरान विरोधी इस विश्लेषक ने सवाल किया कि क्यों ईरान विजेता है, उसके विजयी होने की वजह क्या है, क्या इस प्रक्रिया को खत्म किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे। इस ईरान विरोधी विश्लेषक ने निराधार दावा करते हुए आतंकवाद, अर्धसैनिक अमेरिकी नीति, ईरानी प्रभाव व पकड़ और पश्चिमी देशों द्वारा परमाणु समझौते के समर्थन को अमेरिका के मुकाबले में ईरान की जीत का कारण बताया है। इसी प्रकार वलीद फारिस ने दावा किया कि ईरान न केवल अरब देशों बल्कि पश्चिमी देशों में भी पैठ बना लेगा। उन्होंने अंत में लिखा है कि ईरान अभी विजेता है और तब तक विजेता रहेगा जब तक अमेरिकी नीतियां ईरानी राजनेताओं के समर्थन के अर्थ में रहेंगी।
इसराइली टीवी के चैनल 12 ने सूचना दी है कि रूसी सैनिकों ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसराइली युद्धक विमानों पर हमला किया। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायनी संचार माध्यमों ने रिपोर्ट दी है कि रूसी सैनिकों ने पहली बार S-300 डिफेंस सिस्टम से सीरिया में इसराइली युद्धक विमानों की ओर मिसाइल फायर किया। इसराइल टाइम्स और इसराइली टीवी के चैनल 12 ने सूचना दी है कि पिछले सप्ताह इसराइली युद्धक विमानों ने सीरिया के पश्चिम उत्तर में हमला किया था, जिन पर रूसी सैनिकों ने S-300 डिफेंस सिस्टम से प्रक्षेपास्त्र फायर किया था। इसराइली संचार माध्यमों के अनुसार रूस की ओर से सीरिया में इसराइली युद्धक विमानों को निशाना बनाना इस बात का सूचक हो सकता है कि इसराइल के बारे में रूस के दृष्टिकोण बदल गए हैं। इसराइल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गत शुक्रवार को यह घटना उस समय पेश आई जब इसराइली युद्धक विमानों ने सीरिया के पश्चिम उत्तर में स्थित मिसयाफ शहर के निकट कई बार बमबारी की। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी कि इस हमले में सीरिया के 5 नागरिक शहीद और 7 घायल हुए थे। इसी बीच सीरिया के एक जानकार सूत्र ने बताया कि गत रात्रि लगभग 8:20 पर ज़ायनी शासन ने मिसाइल फायर करके सीरिया के कई क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। इसराइल के मीडिया सूत्रों ने खबर दी है कि सेना वेस्ट बैंक के ऑपरेशन में युद्धक हेलीकॉप्टरों के प्रयोग का जायजा ले रही है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इसराइली मीडिया सूत्रों ने बताया है कि जेनिन कैंप में सशस्त्र संघर्ष में सेना की विशेष यूनिट के एक अधिकारी के घायल होने के बाद सेना वेस्ट बैंक में युद्धक हेलीकॉप्टरों के प्रयोग का जायजा ले रही है। इसराइली चैनल 12 ने रिपोर्ट दी है कि सेना की योजना वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन में शूटिंग के तरीकों को बदलने की है। अरब 48 वेबसाइट के अनुसार सेना का दावा है कि दर्जनों फिलिस्तीनी बंदूकधारी इसराइली सेना पर फायरिंग में व्यस्त थे और इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए फायरिंग के स्तर को बढ़ाना जरूरी है।
ज़ायनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराकर ने ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत किया और कहा कि 8वें दशक में जिस तरह से ज़ायनी सरकार खत्म हो गई, उसी तरह मैं इस बात से चिंतित हूं कि कहीं निकट भविष्य में इसराइल का भी अंत न हो जाए। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार एहूद बराकर ने समाचार पत्र एदियूत अहरनुत से वार्ता में कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहूदियों की कोई भी सरकार 80 साल से अधिक बाकी नहीं रही, किंतु 2 स्थानों पर और 8वें दशक में उनका भी विभाजन व अंत हो गया। पहली सरकार दाऊद रजा के दौर में और दूसरी हशमुनियों के काल में। इसी प्रकार यहूद बराकर ने कहा कि इसराइल के गठन का भी 8वां दशक चल रहा है और मैं इस बात से चिंतित हूं कि 8वें दशक का अभिशाप पहले वाली यहूदी सरकारों की भांति कहीं इसराइल को भी अपनी चपेट में न ले।
रूस के राष्ट्रपति ने मॉस्को के ऊर्जा विभाग पर यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की ओर से सचेत किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय संघ की ओर से रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सचेत किया है। रूस पर लगे कई प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात में कहा, यूरोपीय संघ चाहता है कि वो देश के गैस और तेल सेक्टर पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दे और उनका ये फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और अमेरिका के दबाव की वजह से है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ के नए रूस की ऊर्जा की सप्लाई पर प्रतिबंध से यूरोप के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मुस्लिम विरोधी भावनाओं की एक और घटना में मंगलवार को हिंसक भीड़ ने नीमच शहर की एक मस्जिद में आग लगा दी। भारतीय सूत्रों के अनुसार मूर्तियों को एक दरगाह की दीवार पर रखा गया था। घटना के बाद नीमच पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में भीड़ सड़कों पर हंगामा करती दिख रही है, क्योंकि कुछ दंगाइयों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि दंगाई मस्जिद में आग लगाने और मुस्लिम घरों पर पथराव करने में शामिल थे। ट्विटर पर साझा किए गए एक अन्य वीडियो में नीमच शहर के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार ने घटना का विवरण साझा किया। दंगा प्रभावित इलाके में मीडिया को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि इस इलाके के पास एक दरगाह है जहां हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिससे दोनों गुटों में विवाद हो गया।
और अंत में यह समाचार कि भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। भारतीय सूत्रों ने भारत सरकार के हवाले से बताया है कि नई दिल्ली काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलना चाहती है, लेकिन तालिबान को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय मीडिया का कहना है कि सरकार निकट भविष्य में अफगानिस्तान में अपना दूतावास दोबारा खोलने पर गौर कर रही है, लेकिन तालिबान सरकार को स्वीकार करने की कोई योजना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए फरवरी में काबुल के दौरे पर गई थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान और क्यूबा के संबंध, लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन की याद और भारत में तेजी से बढ़ती महंगाई पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। ईरान का कहना है कि हम क्यूबा के साथ स्थायी और दीर्घकालीन आर्थिक संबंधों के इच्छुक हैं। एक समीक्षा के साथ उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
क्यूबा के उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल में शामिल क्यूबा के राष्ट्रपति के विशेष दूत रिकार्डो काब्रिसास रोविज ने ईरानी अधिकारियों से भेंट वार्ता की। क्यूबा के राष्ट्रपति के विशेष दूत ने दोनों देशों के संयुक्त आर्थिक सहयोग की आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए तेहरान का दौरा किया। क्यूबा के इस वरिष्ठ अधिकारी की यात्रा का मकसद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के स्तर को बढ़ाना था। کیوبا کے اپ پردھان منتری اور ایران کے وت اور آرتھک معاملوں کے منتری نے اپنی ملاقات میں دونوں دیشوں کے آرتھک سہیوگ میں وردھی کے لیے سہیوگ کا کرم جاری رکھنے پر سہمتی ویکت کی۔ اسلامی گنتنتر ایران کے وت اور آرتھک معاملوں کے منتری سید احسان خاندوزی نے اس ملاقات میں کہا کہ اسلامی گنتنتر ایران کی سرکار لیٹن امریکی دیشوں وشیش کر کیوبا کے ساتھ استھائی مضبوط اور لمبے آرتھک سمبندھوں کی استھاپنا کی اچھک رہی ہے۔ اس ملاقات میں کیوبا کے اپ پردھان منتری اور راشٹرپتی کے وشیش دوت نے آرتھک وستار تک پہنچنے کے لیے اپنے دیش کی پراتھمکتاؤں اور آرتھک وکاس کاریکرموں کا بیورا دیتے ہوئے کہا کہ آرتھک گھیرا بندی اور COVID-19 کے گمبھیر خطرے جیسے تتوؤں کے کیوبا کی ارتھویوستھا پر پڑنے والے خطروں کی اور اشارہ کیا اور کہا کہ پریاورن اور یوکرین کی جنگ نے کیوبا کی آرتھک کھادیہ سرکشا کے شیتر کو بہت ادھک پربھاوت کیا ہے۔ کیوبا کے اس ورشٹھ ادھیکاری نے اسی پرکار دیش کی مہتوپورن آرتھک پریوجناؤں میں ایرانی کمپنیوں کے تکنیکی انبھووں سے لابھ اٹھانے پر تتپرتا کا اعلان کیا۔ वर्ष 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता और ईरान में इस्लामी व्यवस्था के गठन के बाद तेहरान ने क्यूबा सहित साम्राज्यवादी देशों के विरोधी देशों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए। पिछले कई दशकों के दौरान तेहरान और हवाना के संबंध बहुत अधिक विस्तृत हुए हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान तथा क्यूबा के सहयोग में विस्तार दोनों देशों के हितों को दृष्टिगत रखकर किया जा रहा है।
فلسطین کے چوطرفہ سمرتھن سے سامراجوادی شکتیاں اپنا آپا کھوتی جا رہی ہیں۔ کاظم زادے کی رپورٹ کو سور دے رہے ہیں احمد عباس۔
74 سال پہلے 14 مئی 1948 کو بریٹین کی مدد سے زائونیوں نے 7.5 لاکھ فلسطینیوں یعنی 2/3 آبادی کو وستھاپت کر کے اسرائیل کی استھاپنا کر دی تھی۔
It's the Nakba, which means...
اس دن کو نقبہ یا بدقسمتی کا دن کہا جاتا ہے۔ بریٹین کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار نے چونکہ اسرائیل کی استھاپنا کا اپرادھ کیا اس لیے فلسطینیوں کا سمرتھن کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں دوسروں سے بڑھ کر یہ سمرتھن کرنا ہے۔ پردرشنکاری نے کہا کہ 1948 میں بالفور گھوشنا پتر جاری ہونے کے بعد سے ہی فلسطینیوں کے خلاف اپرادھوں کا میدان تیار ہو گیا۔ بریٹین اور امریکہ جنہوں نے اسرائیل کی استھاپنا کروائی اس کے سارے اپرادھوں میں بھاگیدار ہیں۔ بالفور گھوشنا پتر پر ہستاکشر بریٹین کی ایک عمارت کے بھیتر ہوا۔ کھیت کی بات ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی پترکار کے شب نے جو اسرائیلی اپرادھوں کی تازہ شکار ہیں یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کے روپ میں بھیانک بدقسمتی پچھلے 74 سال سے فلسطینیوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے اب سارے فلسطینی ایک جٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپسی مت بھید کو بھلا دیا ہے۔ ایک پردرشنکاری نے کہا کہ یہاں کیول مسلمان پردرشن کے لیے ایکترت نہیں ہوئے بلکہ عیسائی یہودی اور انیہ مت کے لوگ سبھی فلسطینیوں کے سمرتھن کے لیے ایکترت ہوئے ہیں۔ جو چیز سامراجوادی طاقتوں کو پریشان کر دیتی ہے وہ فلسطین کا چوطرفہ سمرتھن ہے۔ یہاں تک کہ ایران جیسا دیش جو شیعہ بہل دیش ہے سنی بہل فلسطین کا سمرتھن کرتا ہے۔ اسرائیل کے سمرتھک دیشوں کی اچھا کے وپریت سارے لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے ایک جٹ ہو گئے ہیں۔ اس سمے جب بہت سی عرب سرکاریں اپنی سطح بچانے کے لیے اسرائیل سے سمجھوتے کر رہی ہیں تو فلسطین کی آزادی قریب نظر آتی ہے۔ ایک پردرشنکاری نے کہا کہ فلسطین آزاد ہوگا۔ اس سمے فلسطین کے سمرتھن میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ اور بریٹین میں بھی لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حالات بدل چکے ہیں اور اپارتھائیڈ ختم ہو کر رہے گا۔ ہر سال درجنوں سمرتھن اسرائیل اور اس کے اپارتھائیڈ شاسن کے خلاف اور فلسطینیوں اور بیت المقدس کے سمرتھن میں ہوتے ہیں۔ ان میں قدس دیوس کے پردرشن وشیش روپ سے مہتوپورن ہیں جن میں بھاری سنکھیا میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لندن سے IRIB کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے داموں میں بے تحاشا وردھی سے بھارت میں عام لوگوں کو پیٹ پالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت میں خودرا مہنگائی کی در پچھلے 8 ورشوں میں اپنے سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
بھارت میں لگاتار بڑھتی ہوئی تھوک اور خودرا مہنگائی سے عام لوگوں کو کٹھنائیوں کا سامنا ہے۔ اپریل 2022 میں تھوک مہنگائی کی در بڑھ کر 15.08% پر پہنچ گئی ہے، جبکہ پچھلے ورش اسی اودھی میں مہنگائی در 10.74% رہی تھی۔ اس سمے تھوک مدراسفیتی میں وردھی پچھلے 17 ورشوں میں سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے۔ سبزیوں، پھلوں، دودھ اور تیل سے لے کر روزمرہ کی سبھی آوشک وستوؤں اور کھادیہ پدارتھوں کے مولیوں میں بھاری وردھی ہوئی ہے اور عام لوگوں کی خریداری کی کھمتا پربھاوت ہوئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا پربھاؤ ان کے ویاپار پر بھی پڑ رہا ہے۔
آپ پیسہ نکال کر راضی نہیں ہے۔ جو ریفائنڈ آج سے 2 مہینے پہلے 90 روپے کا تھا، وہ 190 روپے ہو گیا ہے۔ ہر چیز میں 25-30-40% تک تیزی آئی ہے۔ دکانداری میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔
ایسے اداس ہو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان۔
مہنگائی ہم کیا کریں گے، 1 کلو یعنی 1 کلو والا آدھی کلو لے رہا، آدھی کلو والا 2.5 گرام مال لے کر رہا، مہنگائی ہوگی تو بندے میں پبلک چلا دی کام۔
خودرا مہنگائی کی در بھی پچھلے 8 ورشوں میں سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے، اور مئی ورش 2014 کے بعد خودرا مہنگائی کی در 7.79% تک پہنچ گئی ہے۔ مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے ان کی رسوئی کا بجٹ کافی پربھاوت ہو رہا ہے، اتہ سرکار کو چاہیے کہ اس اور بھی دھیان دے۔
تو ہمارا راشن کا سامان پہلے 5,000 میں آتا تھا، وہ ابھی ہمارا 10,000 میں آ رہا ہے۔ سیدھا تیل اتنا مہنگا ہو گیا، پہلے فارچون 100 روپے کا آتا تھا، ابھی وہ 180-190 روپے کا آ رہا ہے۔ تو ہر چیز میں مہنگائی ہے، تو یہ کم تو اویس ہونی ہی چاہیے۔
بھارت میں ایندھن اور پیٹرولیم پدارتھوں کے مولیوں میں بھی کافی وردھی ہوئی ہے۔ دیش میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے جہاں وپکش نے کیندر سرکار کی اس کے انوسار غلط آرتھک نیتیوں کو ذمہ دار بتایا ہے، اور دوسرے انوشک مدوں کو چھیڑ کر اس مہتوپورن مدوں سے جنتا کا دھیان ہٹانے کا آروپ لگایا ہے، وہیں کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے یدھ کے کارن انتراشٹریہ بازار میں کچے تیل اور پراکرتک گیس کے مولیوں میں وردھی سے دیش میں مہنگائی کی در میں وردھی ہوئی ہے، جسے کم کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی راجنیتک چرچا جسے ابھی آپ نے سنا۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ہمارا کاریکرم آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، سبھا کے دوسرے بھاگ میں اب ہم ساپتاہک کاریکرم آج کل پیش کرنے جا رہے ہیں، کنتو اس سے پہلے پرستت ہے عمر خیام کے بارے میں ایک وشیش کاریکرم۔ Thank you.
दोस्तों, उमर खय्याम के सम्मान दिवस पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज 28 उर्दी बहिश्त अर्थात 18 मई है और आज के दिन को उस महान हस्ती की याद में मनाया जाता है जिसने ईरानी कैलेंडर को संकलित किया है। वो महान हस्ती 5वीं हिजरी कमरी अर्थात 11वीं शताब्दी के ईरान के महान शायर, विद्वान, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री उमर खय्याम हैं। उमर खय्याम वो महान हस्ती हैं जो न केवल ईरान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं। उमर खय्याम का 427 हिजरी शमसी बराबर 1048 ईस्वी में निशापुर में जन्म हुआ था। खय्याम की उपाधि संभवतः इसलिए उन्हें दी गई है क्योंकि उनके पिता निशापुर में तंबू सिलते थे।
उमर खय्याम का जन्म उस समय हुआ था जब राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का माहौल था। ये वो समय था जब एक तरफ आले बुए की सरकार का अंत हो गया और सत्ता की बागडोर सलजुकिकों के हाथ में आ गई थी और दूसरी ओर सलीबी युद्ध आरंभ हो चुका था और इस्माइली संप्रदाय ईरान के राजनीतिक वातावरण में दाखिल हो चुका था। इन सब हालात में उमर खय्याम ईरान के निशापुर नगर में धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और गणित जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में लग गए और 22 साल की उम्र में वे गणित के क्षेत्र में एक किताब लिखने में सफल हो गए। अधिकांश ईरानी और दुनिया के बहुत से लोग उमर खय्याम को एक शायर के रूप में जानते हैं, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पहले वो महान विद्वान, हकीम और गणितज्ञ हैं, उसके बाद शायर हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने भी इतिहासकारों का अनुसरण करते हुए उन्हें मध्ययुगीन शताब्दी के गणितज्ञ का नाम दिया है। उमर खय्याम की अधिकांश किताबें अरबी भाषा में हैं क्योंकि उस समय इस्लामी जगत की भाषा अरबी थी।
वर्तमान समय के ईरानी गणितज्ञ गुलाम हुसैन मुसाहिब उमर खय्याम के संबंध में कहते हैं, उमर खय्याम वो पहले ईरानी हैं जिन्होंने नक्षत्र व खगोल शास्त्र के बारे में शोध व अध्ययन किया है और उसके संबंध में ध्यान योग्य काम किया और नक्षत्र की महत्वपूर्ण गुत्थियों को सुलझाया। ये सही है कि उमर खय्याम गणित के क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता रखते थे, पर साथ ही पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने खगोल शास्त्र के संबंध में भी उल्लेखनीय काम किया है।
जब उमर खय्याम ने अपनी पहली किताब ख्वाजा निजामुल मुल्क को उपहार में भेंट की तो इसके बाद उन्होंने उमर खय्याम को इस्फान बुला लिया और वो सुल्तान जलालुद्दीन मलिक शाह सलजुकी के दरबार में काम करने लगे। उमर खय्याम लगभग 18 वर्षों तक इस्फान में रहे और इस अवधि में उन्होंने दुनिया का सबसे सूक्ष्म कैलेंडर संकलित किया जिसे फारसी भाषा में गाहनामा कहा जाता है। जिस समय उमर खय्याम ने जलाली नाम का कैलेंडर बनाया उस समय उनकी उम्र मात्र 31 साल थी और ईरानी आज भी उनके कैलेंडर से लाभ उठा रहे हैं। जलाली या हिजरी शमसी दुनिया का सूक्ष्मतम कैलेंडर है और इसे महीनों का पता लगाने के अलावा साल बदलने का सही समय भी ज्ञात हो जाता है।
दोस्तों, ये जानना आपके लिए रोचक होगा कि साहित्य, शेर, गणित और खगोल शास्त्र उमर खय्याम के जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, परंतु ये पूरे नहीं हैं। उमर खय्याम दर्शन और तर्क शास्त्र की भी गूढ़ जानकारी रखते थे। इन विषयों के बारे में उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। बहुत से विशेषज्ञ उमर खय्याम को दर्शन शास्त्र में इब्न सीना का उत्तराधिकारी मानते हैं। इस प्रकार उमर खय्याम की संगीत के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ थी। इसके अलावा उन्होंने ईरान के इतिहास के बारे में भी नवरोज नामा नाम की एक किताब भी लिखी है। क्योंकि उमर खय्याम ने विभिन्न क्षेत्रों में ईरान और ईरानी समाज की बहुत सेवा की है, इसलिए 28 उर्दी बहिश्त को उनके सम्मान में उमर खय्याम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उमर खय्याम एक दक्ष शायर थे ان کی سندر چوپائیاں شعر اور ساہتیہ کی دنیا میں ان کی بہترین یادگار کے روپ میں آج بھی باقی ہیں۔ پرتیت یہ ہو رہا ہے کہ عمر خیام نے شعروں کا چین ویکتیگت روچی و بودھ کے انوسار کیا ہے اور انہیں پرکاشت کرنے میں ان کی کوئی وشیش روچی نہیں تھی۔ اسی پرکار یہ بھی سمبھو ہے کہ عمر خیام نے اپنی وشیش آئیڈیالوجی اور سمے کے حالات کی وجہ سے پوشیدہ رہنے اور پرسدھ نہ ہونے کو ہی پراتھمکتا دی تھی۔ عمر خیام کے جو شعر ہیں ساہتک سندرتا کے علاوہ ان کے بہت گہرے ارتھ ہیں اور وہ شعر درشن شاستر کے کھیتر میں عمر خیام کے درشٹی کون کے بھی پریچایک ہیں۔ حافظ، سعدی اور مولانا جیسے ایران کے دوسرے مہان شاعروں کے وپریت عمر خیام نے اپنے شعروں کو بہت ہی سادی و سپشٹ بھاشا میں بیان کی ہے اور ان کی یہی سادی شیلی اس بات کا کارن بنی ہے کہ آج انہیں ایران اور دنیا میں بہت سے لوگ ایک مہان شاعر کے روپ میں جانتے ہیں۔
البتہ برٹش شاعر ایڈورڈ کی اس کار میں بہت بھومکا ہے۔ اس نے عمر خیام کے شعروں کو انگریزی بھاشا میں انواد کیا ہے اور اس نے عمر خیام کے شعروں کی مدد سے انگریزی بھاشا میں شعر بھی کہے ہیں، یعنی انگریزی بھاشا میں شعر کہنے میں عمر خیام کے شعروں سے مدد لی ہے۔ اس پرکار اس نے ایک اور عمر خیام کے شعروں کا انگریزی بھاشا میں انواد کیا تو دوسری اور خود عمر خیام کے شعروں کو آدھار بنا کر انگریزی بھاشا میں شعر کہے اور اس نے عمر خیام کا پرچے ایک پرسدھ ایرانی شاعر کے روپ میں کرایا ہے۔
واستو میں عمر خیام وہ مہان ایرانی ودوان، درشن شاستری، گنتجھ اور شاعر ہیں جنہوں نے کم شعر کہہ کر بھی انتراشٹریہ استر کی خیاتی ارجت کر لی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمر خیام کی چوپائیاں شعر نہیں ہیں بلکہ درشن شاستر کے بارے میں عمر خیام کے وچار و درشٹی کون ہیں۔
لگ بھگ 83 سال کی عمر میں عمر خیام کا ندھن ہو گیا اور ایران کے نیشاپور نگر میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ نیشاپور ایران کے پروتر میں استھت ہے اور وہاں کا فیروزہ بہت مشہور ہے۔ اس نگر میں جہاں پر عمر خیام کو دفن کیا گیا تھا وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، پرنتو ورش 1956 میں ان کی قبر پر عمر خیام نام کی عمارت بنائی گئی جسے دیکھنے کے لیے پرتی ورش ہزاروں ایرانی اور غیر ایرانی جاتے ہیں۔ عمر خیام کی سمادھی پر جو عمارت بنائی گئی ہے اس کا نرمان ہوشنگ سہون نام کے ایک دکش ایرانی واستوکار نے کیا ہے۔
ہوشنگ سہون نے ان کی سمادھی پر عمارت کا نرمان اس پرکار سے کیا ہے کہ وہ سوئم یہ درشاتی ہے کہ عمارت کے نیچے جو مہان ہستی و پروش سو رہا ہے وہ گنتجھ، درشن شاستری اور کھگول شاستری ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے۔ عمر خیام کی سمادھی پر جو عمارت بنی ہے وہ 22 میٹر اونچی ہے اور اس میں 10 ستمبھ ہیں اور ایک ستمبھ کی دوسرے ستمبھ سے دوری 5 میٹر ہے۔ عمر خیام کی جو سمادھی ہے وہ نیشاپور کے سب سے آکرشک پریٹن ستھلوں میں سے ہے۔ اسی پرکار یہ عمارت ایرانی واستوکلا کا بہترین و سندر ادھارن ہے۔ عمر خیام کی سمادھی اور اس کے پاس کا جو درشنیہ ستھل ہے اس کا کھیترفل 20,000 ورگ میٹر ہے اور اس میں لائبریری، مہمان خانہ اور سنگرہالائے بھی ہے۔ اسی پرکار وہاں پر عمر خیام کی ایک پرتیما بھی لگائی گئی ہے۔
ایران میں جو سنگیت بجائے جاتے اور پرچلت ہیں ان میں سے ایک کا نام خیام خانی ہے۔ خیام خانی ایران کے دکشن میں اور بو شہر پرانت میں بہت ادھک پرچلت ہے۔ ایران کے دکھنی چھیتر اور پرانت سنگیت کی درشٹی سے بہت سمردھ چھیتر ہیں اور جو بھی سنگیت آپ کو چاہیے وہ وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ بو شہر پرانت میں لوگ خوشی کے اوسروں پر خیام خانی کرتے ہیں۔ عمر خیام کے وچار اور دشت میں دنیا گزر جانے کی جگہ ہے، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہاں جتنا ہو سکے پر لوگ کے لیے اچھا کام کر لے، وہاں پر لوگوں کے کرم ہی کام آئیں گے۔ وہاں پر دنیا کے بد استھان، سمپتی اور پرسدھی آدھی ایک بھی کام نہیں آئے گی۔
پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان یہاں جو بوئے گا وہاں وہی کاٹے گا۔ پرلوک میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، پرلوک میں انسان کے کرموں کا حساب کتاب ہوگا۔ وہاں پر انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش ایک بار مجھے دنیا میں جانے کا اوسر مل جاتا تو وہاں پر مہانیشور کی اچھا کے انوسار جیون ویتیت کر کے آتا، مگر کسی کو بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی انومتی نہیں دی جائے گی۔
پرلے کے دن جو لوگ سورگ میں جائیں گے وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش اور نیک کام کر لیے ہوتے تو سورگ میں مجھے اور اچھا استھان ملتا، اور جو لوگ نرک میں جائیں گے وہ اس بات پر بہت پچھتائیں گے کہ کاش گناہ نہ کیے ہوتے اور اموک ویکتی سے دوستی نہ کیے ہوتے۔ پرلے کے دن بہت سے لوگ برے لوگوں کی دوستی اور غلط کاریوں میں ان کے انوسرن کے کارن نرک میں جائیں گے۔ نرک کتنا برا ٹھکانہ ہے، جو لوگ نرک میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ دہکتی ہوئی آگ میں رہیں گے، وہاں جانے والوں کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ نرک کی آگ میں جلیں گے، وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، نرک میں جانے والوں کو منہ کے بل اس میں پھینکا جائے گا۔
اسی طرح جو لوگ سورگ میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ سورگ میں رہیں گے اور سورگ کی نعمتوں سے لابھ اٹھائیں گے۔ سورگ میں جانے والوں کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہاں سورگ کی سندر افسراؤں سے ان کا وواہ کیا جائے گا۔ دوستو، یہاں ایک بندو کا الیکھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو مہیلائیں سورگ میں جائیں گی مہان و سرو سمرتھ ایشور انہیں جنت کی حوروں سے بھی ادھک سندر بنا دے گا۔
بہرحال عمر خیام وہ مہان ایرانی درشن شاستری، گنتجھ، کھگول شاستری اور شاعر ہیں جنہوں نے ایران اور ایرانی سماج کی بے جوڑ اور انمول سیوائیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے وچاروں سے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرم بھومی ہے نہ کہ پھل بھومی۔ اچھے اور برے کاموں کا پھل پرلوک میں ملے گا، اور جتنا ہو سکے انسان کو اپنے پرلوک لیے کام کرنا چاہیے۔
تو دوستو، کاریکرم کی سماپتی سے پہلے ایک بار پھر مہان ایرانی مہاپروش عمر خیام کی سیوا میں شردا سمن ارپت کرتے ہیں اور آج کے کاریکرم کا انت پیغمبر اسلام کے پران پریہ ناتی امام حسن علیہ السلام کے اس سورن کتھن سے کر رہے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا گزرگاہ ہے، یعنی گزرنے کی جگہ ہے نہ کہ رہنے کی، اور اپنی گزرگاہ سے رہنے کے استھان کی جگہ کے لیے نیک کام کر لو۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم مہردادی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ आज के कार्यक्रम में हम फिलिस्तीनी पत्रकार और अल जजीरा के रिपोर्टर शिरीन अबू अकले की इसराइली सैनिकों के हाथों मौत की समीक्षा करेंगे।
शिरीन अबू अकले अरब जगत और क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्टर थी। उनका जन्म सन 1971 में बैतुल मुकद्दस के एक अरब ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने फिलिस्तीन के एक शहर में स्कूल की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए जॉर्डन यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इसे छोड़कर पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फिलिस्तीन लौट आईं और सन 1997 में अल जजीरा चैनल से जुड़ गईं। 11 मई को अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक स्थित जेनीन शरणार्थी कैंप में इसराइली सैनिकों के हमले को कवर करने के दौरान इसराइली सैनिकों की गोली का निशाना बनकर वे शहीद हो गईं।
पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से फिलिस्तीन की पीड़ित जनता की आवाज वो बनी हुई थी और उनके दर्द और दुखों को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही थी। अपने जीवन की रिपोर्ट में उनके शब्द थे, ज़ायनी शासन के सैनिकों ने जनीन पर धावा बोल दिया है और एक घर को चारों ओर से घेर लिया है।
फिलिस्तीन में कोई गांव, शहर या ऐसा शरणार्थी कैंप नहीं है जहां से शिरीन ने रिपोर्टिंग न की हो। इसीलिए कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये लिखा है कि फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा उनसे परिचित था। वे हर संवेदनशील अवसर पर घटना स्थल पर पहुंच जाया करती थीं, जैसे कि दूसरे इंतफाजा के दौरान बैतुल मुकद्दस से रिपोर्टिंग, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों पर ज़ायोनियों के हमलों और हमास तथा इसराइल युद्ध को कवर करना उसमें शामिल है।
शिरीन ने 11 मई को जेनिन में इसराइली सेना के छापे की वीडियो रिपोर्टिंग करते हुए कहा था, जेनिन में स्थिति बहुत संवेदनशील है लेकिन यहाँ के लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं और मेरी टीम यहाँ चल रही इसराइली सेना की छापेमार कार्रवाई से पल पल आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे।
ग्यारह मई को बुधवार के दिन वे हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हुईं। किसी भी अनजाने खतरे से बचने के लिए उन्होंने प्रेस की अपनी जैकेट पहन ली ताकि झड़प या टकराव की स्थिति में रिपोर्टिंग के दौरान वे सुरक्षित रह सकें। इसराइली सैनिक जनीन में एक फिलिस्तीनी नागरिक के घर को घेर चुके थे। लाउडस्पीकर से वे आत्मसमर्पण के लिए कह रहे थे। अचानक इसराइली सैन्य दल ने फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही दूरी पर खड़ी रिपोर्टिंग कर रही शिरीन को सीधे निशाना बनाया गया। गोली उनके चेहरे पर लगी और वे फौरन जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में गोलियों की आवाज आने के बाद खून से लथपथ हालत में उन्हें जमीन पर पड़े देखा जा सकता है। उसी दौरान उनके एक साथी के कंधे पर गोली लगी। गोलियों की बौछार के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शिरीन के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस खबर के फैलते ही पूरे फिलिस्तीन में गम की लहर दौड़ गई और विश्व भर की मीडिया ने इस पर गहरे दुख का इजहार किया। अल जजीरा टीवी चैनल ने चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर ज़ायनी सेना को शिरीन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसे बिना किसी उकसावे के एक निर्दोष की हत्या करार दिया। हालांकि इसराइली सेना और ज़ायनी अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और दावा किया कि शिरीन की मौत सशस्त्र फिलिस्तीनियों के साथ फायरिंग के आदान प्रदान के दौरान हुई है, जबकि वहां मौजूद पत्रकारों और अन्य लोगों का कहना था कि इसराइली सैनिकों के अलावा वहां किसी ने कोई फायरिंग नहीं की। कई न्यूज़ रिपोर्टरों और समाचार एजेंसियों ने भी इसी दावे की पुष्टि की है। फिलिस्तीनी पत्रकार अली समुदी का भी कहना है कि अचानक से इसराइली सैनिकों ने हम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्होंने बेरहमी से शिरीन की हत्या कर दी। एक गोली मुझे भी लगी।
एक महिला पत्रकार की हत्या तक ही ज़ायोनी सेना की बर्बरता सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी शव यात्रा में शामिल लोगों पर इसराइली सैनिकों ने लाठियां भांजी और यहां तक कि शीरीन के जनाजे का अनादर भी किया। इसराइली सैनिकों के हमले में कई लोग घायल हो गए। आखिरकार शीरीन को बैतुल मुकद्दस के दाऊद नबी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया।
इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने भी अल जजीरा की रिपोर्ट शीरीन अबू अखले की दुखद मौत की निंदा की है। ओआईसी ने कहा है कि इसराइल ने एक बार फिर यह अपराध करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मीडिया की आज़ादी का उल्लंघन किया है। ओआईसी का कहना है कि यह अपराध सच को दबाने की ज़ायोनी शासन की नीति के तहत अंजाम दिया गया है। इस्लामी देशों के संगठन ने इस जघन्य अपराध के लिए ज़ायोनी शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील की है कि इस अपराध के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाए और पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं।
हिंसा की रिपोर्टिंग करते हुए खतरों का सामना करने के सवाल पर एक बार शीरीन ने कहा था, मौत हमेशा आपसे थोड़ी दूरी पर होती है। मुश्किल समय में मैं अपने डर से बाहर निकलती हूँ। मैंने लोगों के करीब रहने के लिए पत्रकारिता चुनी है। ज़मीन पर हालात बदलना संभवतः मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कम से कम उस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा तो सकती हूँ। वे उन चुनिंदा फिलिस्तीनी महिला पत्रकारों में से एक थीं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती थीं, ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस और वेस्ट बैंक से। उनके कुछ सहयोगी उन्हें फिलिस्तीनी युद्ध रिपोर्टर तक बताते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि फिलिस्तीनियों के लिए अकले एक पत्रकार से बढ़कर थीं।
इसराइल लंबे समय से अवैध अधिकृत इलाकों और गज़ा से अल जजीरा की कवरेज की आलोचना करता रहा है और कई बार ज़ायोनी सैनिकों ने इस चैनल के पत्रकारों और रिपोर्टरों को रिपोर्टिंग से रोका है या उनके काम में रुकावटें डाली हैं। पिछले साल बैतुल मुक़द्दस में विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले अल जजीरा के एक अन्य रिपोर्टर को हिरासत में ले लिया गया था। अल जजीरा का कहना था कि इसराइली पुलिस ने रिपोर्टर के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया था।
पिछले ही साल गज़ा पर हवाई हमलों के दौरान इसराइल ने हवाई हमले किए और उस इमारत को जमींदोज कर दिया जिसमें अल जजीरा और कई विदेशी न्यूज़ चैनलों के दफ्तर थे। ज़ायोनी सेना के इस अपराध की निंदा करते हुए अल जजीरा के कार्यवाहक महानिदेशक ने कहा था, गज़ा स्थित टावर पर हमला करना जिसमें अल जजीरा और दूसरे मीडिया संस्थानों के दफ्तर थे, मानवाधिकारों और सूचना अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराध माना जाएगा। इससे पहले सन 2018 में गज़ा में ज़ायोनी सैनिकों ने एक पत्रकार को गोली मारकर शहीद कर दिया था।
दुर्भाग्यवश ज़ायोनी सैनिकों के हाथों शीरीन अबू अखले की मौत किसी पहले पत्रकार की मौत नहीं है और न ही ये आखिरी मौत होगी। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से लेकर अब तक 45 पत्रकार ज़ायोनी सैनिकों के हाथों शहीद हो चुके हैं। हालांकि इसराइल की बर्बरता का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। यहाँ सबसे हैरत की बात यह है कि मानवाधिकारों और मीडिया की आज़ादी का ढिंडोरा पीटने वाला पश्चिम अक्सर इसराइल के इन अपराधों पर चुप्पी साध लेता है। अगर अमेरिका और यूरोप इसराइल के अपराधों का समर्थन करना बंद कर दें तो निश्चित रूप से ज़ायोनी इन अपराधों को अंजाम देने का साहस नहीं कर सकेंगे।
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हनिया ने आकिला के श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि ज़ायोनी शासन की बर्बरता, फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा, जनीन शरणार्थी कैंप पर हमले और मस्जिद अल अक्सा के अनादर के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तलवार पर खून की जीत का वक्त आ पहुंचा है। यहाँ ये कहना सही होगा कि इसराइल ने अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए एक अनुभवी महिला पत्रकार को लक्ष्य बनाकर शहीद कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ज़ायोनी शासन सबसे ज़्यादा सच्चाई के दुनिया के सामने आने से डरता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है।
इस बहादुर और साहसी महिला पत्रकार की हत्या, वो भी रिपोर्टिंग करते वक्त, एक जघन्य अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का खुला उल्लंघन है। ये न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मजाक उड़ाना भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पत्रकारों, रिपोर्टरों और सहायता कर्मियों को खतरनाक जगहों और युद्ध क्षेत्रों में भी सुरक्षा हासिल है और उन्हें किसी भी कीमत पर निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि विश्व समुदाय इसराइल के इन अपराधों का जवाब मांगे और अपराधियों की जिम्मेदारी तय करे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट अल अकीला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के प्रांगण में आग लग गई। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री इराक की राजधानी बगदाद में मुलाकात करेंगे। रूस ने इसराइली युद्धक विमान पर हमला किया। अतिवादी हिंदुओं ने मध्य प्रदेश में मस्जिद में आग लगा दी। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता नोट कर लें, pastoday.com/hi। तो श्रोताओ, खुदा हाफिज़।